सद कहते हैं दीवार को, जराए कहते हैं मीन्स को, जिना यानी वो सारे दरवाजे बंद कर दो जिधर से जिना के होने की उम्मीद है। अभी सोच के साथ सुनिएगा कि ये बुराइयाँ एकदम तो नहीं होती ना, तो उसमें एक सबसे बड़ी वजह क्या बनती है, घरों में एक दूसरे के साथ बिला तकल्लुफ आते जाना। कजन्स आ रहे हैं, बेटियाँ उधर जा रही हैं, भाई बहन रह रहे हैं, बच्चे सारे सारे रातों में इकट्ठे रह रहे हैं, ये हो रहा है, स्लीप ओवर्स हो रहे हैं, नानी के रह रहे हैं, दादी के रह रहे हैं, नहीं करो। अब इसको सुनिएगा, इसमें बहुत सारी अमल की बातें। पहला सद्दे ज़राए क्या है कि किसी के घर में इतनी बेतकल्फ़ी से ना चले जाओ जैसे कि अपने घर में आते हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा दूसरों घरों में दाखिल ना हो जब तक के उनसे इजाज़त ना तलब कर लो। और इजाज़त कौन सी? तस्तानिसू, रज़ा वाली, उनसो। ये नहीं कि सर पे जाके दरवाज़ा नॉक कर दो और अगला बंदा तो खोले गई। उनस क्या होता है? ऐसी इजाज़त जो देना भी कोई चाहे, खुशी से दे, मजबूरी में ना दे। और क्या करो? वह तो सलीम उल अहलिहा, और घर वालों पर सलाम ना भेज लो। ये तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? इसलिए कि आप देखिए कि घर अमन की जगह है। बात अयबी तो बैतन कहते हैं वो जगह जहाँ घर रात गुजारी जाए, घर को मस्कन भी कहते हैं ना। तो घर में हर वक्त तो आइडियल हालात नहीं होते। किसी वक्त इंसान नहीं चाहता कि कोई उसके पास आए, घर में झगड़ा हो सकता है, घर में कोई पर्सनल काम हो रहा है, कोई बातचीत है, कोई तबीयत ठीक नहीं है, तो हर वक्त हर एक के घर में नहीं घुस सकता इंसान। कल घर में घुसने की बात ही, आज सेलफोन्स हैं। सेलफोन एक हो तो भी बात मानी जाए, 10 किस्म के मैसेजेस हैं। ये चीज़ नापसंदीदा। इस्लाम बड़ा महज़ब एटिकेटेड रिलीजन है। जो आज पढ़ी लिखी कौमों ने असूल अपना लिए ना, लोगों के घर जाने के, आने के, बताने के, वो इस्लाम सिखा रहा है। और आज आप ज़रा किसी को फ़ोन करें, क्या ख्याल है आज शाम को मैं आपके घर आ जाऊँ, कहते हैं ये क्या अमरीकियों वाली बात कर रहे हो, अमेरिकन स्टाइल हो गया, पूछ के आएंगे, आपका अपना घर है जी, रात को आओ दिन को आओ। भाई क्यों रात को दिन को आओ? ये तो बड़ी बुरी बात है। तो ये अच्छा तरीका है हमारे मुल्कों में, और हमारे वो ख़ानदान जो ख़ानदानी बुनियाद पे बाहर के मुल्कों में भी, कोई पता ही नहीं कब उठ के आ जाए। अब तो दरवाजे खोलने ही पड़ते हैं ना, बेल तो करनी पड़ती है। पहले तो दरवाजे भी नहीं होते थे, पर्दे डाले होते थे, तो बद्दू लोग थे ना एकदम किसी के घर में आ जाते थे। अल्लाह ताला इन सारी बेतकल्फियों को पसंद नहीं कर रहा कि ऐसा ना करो। तवक्को है कि तुम इसका ख्याल रखोगे, फिर अगर वहाँ किसी को ना पाओ तो दाखिल ना हो जब तक कि तुमको इजाज़त ना दी जाए। यानी घर खुला है, घर वाला अंदर से जवाब नहीं दे रहा तो अंदर नहीं आ सकते। इतना बड़ा हुक्म दे दिया, क्यों? हो सकता है कि बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया। हत्ता कि आपको पता है कि किसी घर का बच्चा दरवाज़ा खोल दे और बड़ा ना खोले तब भी नहीं अंदर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बेचारे मासूम होते हैं, ना समझ होते हैं। बल्कि इससे भी बड़ा टेस्ट देखिए, वैज़ा कील लकुमुर जियो फर्जियो, और जब तुम्हें अंदर से कहा जाए वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका, ज़रा आप अपने ऊपर लें। आप अपनी बेतकल्लुफ़ दोस्त के घर गए और ठक 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 दरवाज़ा खटकाया, सरप्राइज़ दिया, और अंदर से उनके शौहर कहते हैं जी सिस्टर अभी जाइए, शाम को आइएगा, कल आइएगा। फिर जो रोते धोते वहीं से फ़ोन पे बातें करते दूसरों को बताते आते आएंगे, आज के बाद हम नहीं जाएंगे इनके घर। अल्लाह कह रहे तुम्हारे हक में बेहतर है, जा। देखिए ना, जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम चाहते हैं ना कि अगला हमें अच्छी तरह डील करे, वेलकम करे, स्माइल दे, और हम देसी लोग पहले ही सोच लेते हैं कुछ खिलाए पिलाए भी। चाय का वक्त है, चले उधर ही जाके चाय पीते हैं। खाने का वक्त है तो चलो खाना तो पूछेंगे ही ना। अब अगला बंदा उस वक्त नहीं काबिल, इस काबिल नहीं, अब आपकी खातिर नहीं करेगा। फिर हम बाहर आके शिकवे करेंगे, हमारी खातिर नहीं की, हमारी इज्जत नहीं की, हमें देख के घबरा गई। तो अल्लाह ताला कहता तब जाओ जब अगला तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा हो। ये असल में मैनर है इसका। और अगर कोई कहता है चले जाओ तो चले जाओ, ये पाकीज़ा है। एक बुज़ुर्ग थे तो वो कहते हैं सारी ज़िंदगी मैं ख्वाहिशमंद रहा कि इस आयत पे अमल करूँ। कैसे? कि मैं किसी के घर जाऊँ और घर वाला मुझे कहे अभी जाओ बाद में आना, तो मैं वापस आ जाऊँ और मेरा इस आयत पे अमल हो जाए। आज हमारे इतने बड़े दिल हैं, हम तो कभी दोबारा जाए ही ना उनके घर। तौबा करो, अल्लाह की पनाह है। हमने अपनी ज़ात के इतने बड़े बड़े बुत रखे हुए हैं कि हम अपने आप को पूजता ही देखना चाहते हैं कि कोई हमें बिल्कुल ओवरलुक तो करे ही ना। कहा जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है, अलबत्ता तुम्हारे लिए इसमें कोई मज़ायका नहीं कि ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जो किसी के रहने की जगह ना हो और जिनमें तुम्हारे फ़ायदे या काम की कोई चीज़ हो। तुम जो कुछ ज़ाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो वो सब की अल्लाह को खबर है। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा के रखें। ये है दूसरा सद्दे ज़राए, ज़िना को रोकने की दूसरी तरकीब। मर्दों को कहो कि अपनी नज़रें बचाएँ और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। क्यों? ये इनके हक़ में ज़्यादा पाक है, ये बात इनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। यानी मर्द नज़र उठाएगा तो फिर ही फितना उठेगा ना। का ये इनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इसे बाखबर रहता है। बहुत सारे लोग लफ्ज़ पर्दा सुनते ही औरतों को डिस्कस करने लगते हैं और औरतों को घुटने लगते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पर्दा औरतों को करना है, हालांकि आप तरतीब में देख लीजिए पहले मर्दों को करना है। हाँ, मर्द के पर्दा करने और औरत के पर्दे में फ़र्क है। मर्द का पर्दा क्या है? नज़रें झुका ले। कितनी मीन अब सारी हैं, सारी तो नहीं झुका सकता ना। गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी आंखें बंद तो नहीं करेगा ना। एक डॉक्टर है, अगर वो किसी ऐसी जगह पे किसी पेशेंट को देख रहा है कि और कोई देख नहीं पा रहा, तो आंखें बंद करके तो नहीं उसको देखेगा ना। ये कौन सी नज़रें हैं जिसमें किसी औरत के हुस्न की तरफ जाए, तवज्जो जाए, सोच जाए, बेतकल्फी होने लगे, राहो रस्म बढ़ने लगे। बचा लो, कहा कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी गुनाहगार कर देगी। नज़र पड़े फौरन झुका लें। मर्द इतना पर्दा भी कर लेना तो आपको पता है, जो औरतें पर्दा करती हैं उनके लिए पर्दा करना कितना आसान है। मैं अक्सर, हम जो पर्दा करती हैं सिस्टर्स, वो मेरी इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझेंगी, कुछ लोगों से पर्दा करना इतना आसान है कि आप चादर ही ढुलका लेना तो आपको पता होता है इन्होंने तो देखना ही नहीं, और इन्होंने खांस के आना है, और इन्होंने बैठना ऐसे तरफ है कि मुंह मर्द औरत की तरफ हो ही ना, पीछा करके बैठेंगे, बेतकल्फी तो करनी नहीं है। और कुछ ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, पर्दे में भी वो आपको ताका झांकी कर रहे होते हैं। अपने बेटों को सिखाइए बचपन से। मैं जब भी कहीं रहती हूँ या जिनके करीब हूँ ना, तो बच्चे 7-8 साल की उम्र के हो ना, तो मैं उनको फिर सिखाती हूँ कि बेटा मर्द ऐसे नीचे देखते हैं, ये जो टुकर टुकर पटर पटर देखते हैं। और आप टीवी देख, आंखें बंद करके तो मर्द नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते ना, यहाँ से तरबियत गलत होती है। जैसे एक औरत को वैसे नहीं देख सकते, तो आप टीवी में एक औरत और लड़की को हीरोइन देखें और उसके जिस्म के सारे हुस्न के हिस्से देखते जाएं, तो क्या ये जायज़ है? यहाँ से खराबियाँ पैदा हुई। पहले कार्टून वाली लड़की दिखाई, फिर बड़ी हुई तो स्कूल में लड़की साथ बैठ गई, और जब बड़े हुए तो फिल्मों और ड्रामों में लड़कियाँ देखी। वो कहते हैं अभी ना आंटियों, ये आंटी हैं, ये बाजी हैं, ये फलां हैं, ये फलां। और औरतों का भी क्या हाल है? सारी और मर्द जो है ना, वो तुम्हारे भाई हैं, और वो तुम्हारे दो मियाँ के दोस्त हैं, वो तो बड़े शरीफ हैं। और हमारे मर्द तो बहुत शरीफ हैं, वो सारी औरतों को भाभी ही कहते हैं। और आपको कहते हैं सबसे ज़्यादा मसले इधर फैलते हैं, ये भाभीज़ नहीं है, ये आंटीज़ नहीं है, इसमें गड़बड़ है। अल्लाह कहते हैं ज़ालिका अज़्का लहुम, तो मर्द नज़रें झुकाएंगे। अपने बेटों को ट्रेनिंग दें, झुकाएं, अपने सामने भी बैठना सिखाएं। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह मिनज़्ज़ुल्ली, ये सिखाने की बातें होती हैं और ये बच्चों को बतानी पड़ती हैं। खैर, अब मर्द बेचारे और क्या करें? आप कहते नहीं मर्द भी निकाब करें, बड़े खूबसूरत होते हैं जो निकाब कर लें। जब मर्द के ज़ाहिर में कोई ब्यूटी नहीं है, सख्त के सख्त, पत्थर के पत्थर, हाश मर्द हैं, अब उनके फिज़िकली कोई उनमें अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उसको नहीं कहा कि चेहरा छुपाओ, बाल छुपाओ, कंधे छुपाओ, उस पर कोशिश है ही कोई नहीं। कभी खूबसूरत मर्द देखा है आपने कभी दुनिया में कोई? अब आपके चेहरों से मुझे दिख रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। पहले माँ अपने बच्चे को चांद कहती है, फिर सास के बच्चे को चांद कहती है, तो फिर उसकी मर्जी है ना। लेकिन ये खैर बात ऐसी कोई मजाक की नहीं थी। मर्दों में फिजिकल वो अट्रैक्शन नहीं होती जो औरत में होती है, तो मर्द का पर्दा कंप्लीट। मर्दों को बस क़यामत के दिन इन दो बातों का जवाब देना पड़ेगा, आंखों को झुका लो और वक़्फ़ज़ु फ़ुरूजहुम। ये भी बात समझिएगा, जैसे औरत ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती ना जिसमें उसके काबिले शर्म हिस्से नुमाया हो, मर्द भी नहीं पहन सकते। टाइट पैंट्स पहन के मर्द बाहर जा रहे हैं और शर्ट्स उनकी अंदर गई हुई हैं, उसमें नमाज नहीं होगी, मर्द की सतर नहीं है। और इतनी टाइट जीन्स हैं कि जिसमें जिस्म का एक एक अंग दिखता है, मर्दों के लिए उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जैसे औरत के लिए लूज़ कपड़े हैं, वैसे मर्द के लिए भी लूज़ कपड़े हैं। जैसे औरत सी थ्रू नहीं पहन सकती, मर्द भी नहीं पहन सकता। अब इसके बाद अब औरतों की बारी आती है। वकुल्लिल मोमिनाति यग़्दुदना मिन अबसारिहिन, अरे नबी, मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखे। वही हुक्म है ना जो मर्दों को मिला, बराबरी, इक्वलिटी, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का आपस में लिंक है। इतनी बात करके मर्दों को तो कह दिया था ज़ालिका अज़्का लहुम, औरतों को एक और एक्स्ट्रा, बस एक एडिशनल हुक्म है, और वो क्या? वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। ये तीन लफ्ज़ हैं बस, जिसमें आपको अल्लाह ने मर्दों से ज़रा सा एक्स्ट्रा कह दिया, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपना बनाव सिंघार ज़ाहिर ना करें सिवाय इस चीज़ के जो खुद बहुत ज़ाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रखे। ये एक एक्स्ट्रा उसकी मोर डिस्क्रिप्शन के अपनी जीनत ना जाहिर करें। आप गिनते जाएं, आपको एंड पे खुद बहुत पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। नज़रें औरत भी झुकाएगी, वो भी गैर मर्द को नहीं देखेगी, चाहे साथ पढ़ता है या साथ बैठता है या साथ काम करता है। उस नज़रों से अपने लुक्स को पास नहीं करेंगे कि जिसमें इश्तहा होगी। दूसरी बात है कि वो औरत भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाएगी, अपने सतर को छुपाएगी, ढांकेगी। तीसरी चीज़, जीनत को छुपाएगी। सबसे ज़्यादा औरत के पास जीनत किस चीज़ में होती है? औरत की जीनत की क्या चीज़ है? आप बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं, क्या देखते हैं? बाल देखते हैं, पाँव की एड़ियाँ देखते हैं, हथेलियाँ देखते हैं, तो बात वाजे हो गई। इस मौजू पे अभी बात ना भी करें ना, ये सूरत अलहज़ाब में आएगा, लेकिन सीधी सी बात है, अपनी जीनत को छुपा लें। और जीनत में फिर हर वो चीज़ जो डेकोरेशन में है, डेकोरेट किया, मेकअप किया हुआ है, जीनत है। ज्वेलरी पहनी हुई है, जीनत है। फैंसी कपड़े पहने हैं, जीनत है। आपके खूबसूरत कपड़ों के रंग है, चमकते दमकते आपने खिले हुए रंग पहने, ये जीनत है। अब इसको समझें फिर एंड तक पहुँचते हैं। अगली चीज़, वल यद्रिबना बिखुमरी हिन्ना लाजुजुबिन, अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रखे। तीसरा हुक्म औरत को कि अपने फ्रंट पार्ट को छुपाए। बच्चा बच्चा जानता है कि औरत की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली चीज़ उसके चेहरे के बाद उसका सीना है, और ये भी पता है कि मर्दों के लिए इसमें कितनी अट्रैक्शन है का अपने जिस्म के फिगर्स को और अपने उभार को एक औरत नहीं दिखा सकती। अगला भी लिखिएगा, चौथी चीज़। अब इसके बाद तो आप पहले अपने लिए भी नियत कर लें, दुपट्टा हो, स्कार्फ हो, जो भी है, उसको पूरे सीने पे इस तरह खोलना कि जिस्म दिखेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि ये औरत किस फिगर की है या इसके जिस्म में किस तरह से अट्रैक्शन है कि नहीं है। नेक्स्ट थिंग फोर्थ, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिना। अब क्वेश्चन हुआ कि क्या औरत हर वक्त हर जगह बस ऐसी रहेगी, तो अब उसकी एक्सेप्शन केसेस बताए गए। और अपनी जीनत का सिंगार ना करें सिवाय अपने उन लोगों के, शौहर, शौहर के साथ दी मोस्ट मैक्सिमम जीनत का हकदार अगर कोई है तो वो शौहर है, फिर बाप, फिर शौहरों के बाप यानी ससुर, बेटे, शौहरों के भाई, भाई भाइयों के बेटे, फिर बहनों के बेटे, फिर अपने मेलजोल की औरतें। अब ये सारे जो रिश्ते मर्दों की सूरत में, इन सब के साथ फ़र्क होगा कि एक ही जैसा है? जितना शौहर के साथ जीनत का इजहार हो सकता है कि उतना बाप के सामने हो सकता है, और भाई के सामने उतना हो सकता है, भांजे भतीजों के साथ हो सकता है। तो अक्ल के साथ सोचें तो हर एक की हदें तो हमें खुद भी पता हैं। अब इसके बाद अपने मेल जोल की औरतें, शरीफ औरतें, सीधी सादी जो आम औरतें होती हैं वो, और अपने ममलूक गुलाम, वो आज है ही नहीं इसलिए हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है बात करने की, और वो ज़ेरे दस्त मर्द यानी वो मर्द जो आपके साथ लगे हुए अपनी ज़रूरतों के लिए, जिनको कुछ भी अपने यानी ज़रूरियात बेचारों की पूरी नहीं होती। कौन से? गैरी उलिल इरबा, जो किसी न किसी और किस्म का की गर्ज ना रखते हों, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से भी वाकिफ ना हुए हों। आज के दौर में ये किस उम्र के बच्चे होंगे जी? कब दिखाते हैं उनको सेक्स मूवीज स्कूलों में? तो बस 6 साल का बच्चा है। फिर जिनको औरतों मर्दों की छुपी हुई बातों का ना पता हो, उनके सामने भी आप आ जाइए। ये बातें तो एक्सेप्शन की थी, वो चार चीज़ों के बाद अब पांचवी चीज़ नोट कीजिए, औरत के पर्दे का हिस्सा। वला यदरिब न बी अर्जुली हिन न लियो लमा युफ़ी न मिन जीनत हिन न, वो अपने पाँव ज़मीन पर मारती भी ना चला करें कि अपनी जो जीनत उन्होंने छुपा रखी हो इसका लोगों को इल्म हो जाए। यानी औरत की चाल, पाँव, आवाज़, कोई घुंघरू हैं तो हील वाली जूती का क्या सवाल है, और खुशबू क्या है? अल्लाह कहते हैं ऐसी खुशबू या ऐसी जीनत कि दूर से पता चल जाए कोई औरत आ रही है। याद रखिए खुशबू एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, कम टू मी, कम हेयर। आज आप देखिए परफ्यूम्स की जैसी एडवर्टाइजमेंट से उतनी तो शायद किसी और की ना हो, तो औरत खुली खुशबू लगाकर जिसमें गैर मर्दों तक उसकी खुशबू जाए, ये इंतहाई घनौना जुर्म है। हत्ता कि यहाँ तक आ गया कि ऐसी औरत घर जाकर गुसल करे। अगर आप मर्दों के पास ऐसी औरत इस सोच के साथ गुजरती अट्रैक्शन करवाए तो वो उनके साथ उसकी बुराई लिखी जाती है। अब मैं इससे नरम लफ्ज़ और क्या बोलूँ, हदीस में तो लफ्ज़ जिना है। जानिया कहा गया ऐसी औरत को जो अपनी खुशबुओं से मर्दों को लुभाती है, दूर से पता चल जाता है कोई आ रहा है। अब ये बातें सुन के एकदम तोते उड़ गए। नहीं, वतूबु इलल्लाह जमीया, कोई बात नहीं, ऐ मोमिनो तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा कर लो, तवक्को है कि फला पाओगे। इज्तमाही तौबा की ज़रूरत है। इस वक्त माहौल ही ऐसा बन गया कि सारी सोसाइटी इस चक्कर में चल पड़ी, हम कहते हैं ये बुरी है, ये अच्छी है, ये कौन सी है, ये कैसी है, इसकी क्या ज़रूरत है। अब आप देखिए कि आयतें हैं तो बड़ी क्लियर, लेकिन इसकी डिटेल्स का तो मौका नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो समझदार लोग हैं उनको बात समझ आ जाती है, जिनको नहीं आती अल्लाह ताला अगली आयतों में दे देगा। बाकी रह गए आपके बहुत सारे सवाल, हिजाब कैसा हो, पर्दा क्या हो, ये सारी बातें सूरत अल-अहज़ाब में आएंगी, लेकिन इतनी बातों के बाद कम अज़ कम हमें एक सोच तो मिल गई है कि हम दूसरों के साथ किस हद तक मिलते हैं, क्या होता है, क्या नहीं करते। अब तीसरा सद्दे ज़राए, पहला क्या था? घरों में बेतकल्फ़ी से ना जाओ। दूसरा, हिजाब की पाबंदियाँ। अब तीसरी चीज़ क्या है? कमारे लोग, अनमैरिड लोगों की शादियाँ कर दो। ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है जिना का, जब भूख लगी होगी तो फिर तो खाने की तरफ नज़र जाएगी ना। तो जब किसी सोसाइटी में बालिग बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं, या वो औरतें मर्द जिनकी शादियाँ हुई फिर किसी वजह से नहीं रहीं, बेवगी है या तलाक हो गई, तो फौरन उनकी शादियाँ कर दो, वरना ऐसी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है जिना का। तो कहा वन के लिया मिनकुम, तुम में से जो लोग तनहा हों यानी मुजरत, और तुम्हारी लौंडी गुलामों में जो साले हों, इनके निकाह कर दो। आज देखे शादी मुश्किल, जिना आसान। शादी 18 साल तक नहीं कर सकते, जिना आप मैट्रिक के पहले भी कर सकते हैं। ये आज की सोसाइटी का जुर्म जिसके लिए ये ब्रोकन सोसाइटीज हैं। और याद रखिए, वेस्टर्न कल्चर, तीरों तलवारों से नहीं ये मरेंगे, इनके पास हथियार बहुत हैं ना, मुसलमानों के पास इतनी ताकत है। ये आज अपनी इन बेकायदगियों की वजह से परेशान है, इनकी नस्ल, इनके ब्रोकन फैमिलीज देखिए, विदाउट मैरिज जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उन्होंने, देखिए आज पूरा वेस्ट इस मसले का शिकार है। ये बातें तो मुसलमानों के मुल्कों में कभी हुई नहीं थी, कभी क्राइसिस सेंटर कोई नहीं होंगे मुसलमान मुल्कों में, इंशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं, किसी औरत को कोई क्राइस होगा ही कोई नहीं अल्लाह के हुक्म से। कोई ओल्ड होम नहीं होगा मुस्लिम मुल्कों में, क्योंकि बूढ़े तो हर घर ओल्ड होम है, हर घर में बूढ़े रहेंगे। इसी तरह बच्चों के डे केयर्स और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, हर माँ अपने बच्चे को देखेगी। तो ये आज तोहफे मिल रहे हैं सोसाइटीज़ को अल्लाह के हुक्मों को छोड़ने के। तो शादी कैसे कर दो, हर एक की कर दो जिसकी नहीं। अब लोग कहते हैं हाय शादी कर दी तो कमाएंगे कैसे, अभी तो ये अपने पाँव पे नहीं खड़े। आप में से किस किस को लगता है कि उसका बेटा अभी अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ? 2 साल का बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। बाज़ लोग 30-30 साल के अपने बच्चे कर देते हैं शादी, नहीं करते उनकी, नहीं पहले जॉब करे, कमाए, घर बनाए, गाड़ी ले। और अब तो मसला ये लड़कियों के साथ भी ये गम लगा दिए, इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गए, उनके जज्बात पामाल हो रहे हैं, वो रोज़ गुनाह की मौत सो रहे हैं, या फिर अपने जज्बात को कत्ल करते हैं या ईमान को कत्ल करते हैं, दो ही चीज़ें हैं ना, तो शादी क्यों नहीं करते? मसला क्या? नहीं अभी घर बने, वही बात है, प्रोटोकॉल में पड़े हुए हैं, जज्बात को मारे हैं, और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम शादियां करते हैं। मैं कह सकती हूँ कि आज शादियां होती नहीं हैं, पिक्चराइज की जाती हैं। कर्जों के बोझ में लदे हुए लोग कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि वो अपने बच्चों की शादियों पर लाखों और करोड़ों रुपया लगा दें। आज शादी को आसान बनाने का कल्चर पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कहते हैं, तुम कहते हो तुम्हारा बच्चा गरीब है, पाल नहीं सकता है एक लड़की को, तो अगर वो गरीब हों तो अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर देगा। अल्लाह बड़ी वसत वाला और इल्म वाला है। और जो निकाह का मौका ना पाए, इनको चाहिए कि फतमा भी इख्तियार करें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर दे। यानी शादी करो, शादी नहीं हो रही, कभी नहीं भी होती तो फिर रोज़े रखो, फिर ऐसी तमाम मजलिस और महफिलों से दूर रहो जहाँ जाकर तुम्हारे दिल में जज्बात उभरते हैं। ऐसे लोगों को अजर मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जवानों की कौम आप निकाह करो क्योंकि ये नज़रों को झुका देता है। आपको कहते हैं कि निकाह आधा ईमान है, शादी करने के बाद बंदे का ईमान महफूज हो जाता है, इसीलिए फरमाया कि इससे रुक जाओ। अब छठी चीज़ अगली जिना को रोकेगी, वो क्या है? किताबत करना। ये क्या है सुन लीजिए बस, क्योंकि आज के दौर में ये है ही नहीं है तो इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ममलूकों में जो मुकातबत की दरख्वास्त करें इनसे मुकातबत कर लो, और अगर तुम्हें मालूम हो कि इनके अंदर भलाई है और इनको इस माल में से दो जो अल्लाह ने तुमको दिया है, यानी गुलामों को गुलामी से आज़ाद कर दो, उनको आज़ाद ज़िंदगी बसर करने दो। वला तुकरी हो, ये अगला जरिया है, छठी चीज़ होगी गालिबा, गिनते जाइए, सिर्फ पॉइंट आउट करना मकसद है। एक और चीज़ जिससे जिना को रोका जा सकता है, और अपनी लौंडियों को अपने दुनियावी फ़ायदों की खातिर कहवा गरी पर मजबूर ना करो, प्रोस्टिट्यूशन, यानी औरतों के जिस्म को बेचना और उससे माल कमाना। आज की सोसाइटी में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए आयतें, कुरान उन उनके हकूक़ की बात कर रहा है जो बेचारियाँ बिकती बकाती, कभी अगवा होती हैं, कभी वाकई किसी बुरे लड़के के हाथों पड़कर ऐसे अड्डों पे पहुंच जाती हैं जहां इनसे जिस्म फरोशी का काम लिया जाता है। इस औरत इस्लाम ऐसी तवायफ़ों के हकूक़ की बात कर रहा है कि ऐसी औरतों को मजबूर ना करो जबकि वो ख़ुद पाक दामन रहना चाहें। इतना प्यारा कलाम है किसी और के पास इस कुरान के सिवा कि जिसको लोगों के सामने पेश कर सके, कि जो माशरे के हर तबके के हकूक़ की बात करता है? आप और मैं होते तो हम इन औरतों को कहते ये गंदी औरतें हैं, वो औरतें तो गंदी हैं, तो जो मर्द उनके पास जाते हैं वो कितना बड़ा एक हमारी सोसाइटी का आप कह लीजिए कि निफाक मुनाफिकाना रवैया है कि जो औरतें ऐसे काम करें वो तो बुरी, नाम क्या कह लेते हैं और जो वहाँ जाते हैं वो क्या है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की बात करके हमें बता दिया कि ऐसे लोगों से ऐसा मना है, और इस्लाम में ऐसी कमाई खाना जिसमें औरत को बेचा जाए वो हराम है। बात तो कड़वी है लेकिन कहना फिर भी चाहूँगी कि आज औरत गाजर मूली की तरह बिक रही है। आपके इश्तहार नहीं बिकते जब तक औरत ना, आपकी लॉन नहीं बिकती जब तक औरत ना। आज बेपर्दगी की वजह से औरत ने खुद को इतना सस्ता कर लिया कि अल्लाह की बना के आज आपकी सब्जी महंगी और औरत सस्ती है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे दे। इसके बाद फरमाया वलकद अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनात, हमने साफ साफ हिदायत करने वाली आयतें तुम्हारे पास भेज दी हैं, और इन कौमों की इबरतनाक मिसालें भी हम तुम्हारे सामने पेश कर चुके जो तुमसे पहले हो गुजरी, और वो नसीहतें हमने कर दी जो डरने वालों के लिए होती हैं। और फिर वो आयत, अगर ये आयत समझ आ गई ना तो ये सारे हुक्म भी समझ आ जाएंगे। देखिए इस सूरत का एक बुनियादी मौजूद है ना, वो अतीउल्लाह और अतीउर रसूल भी है। ये सारी बातें सुन के रिजेंटमेंट और जो दिल में क्वेश्चन आते हैं वो तब आते हैं जब अल्लाह और उसके रसूल का मुकाम नहीं पता। तो फरमाया अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। कायनात में इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में रखा हुआ चिराग, चिराग एक फ़ानूस में हो, फ़ानूस का हाल ये हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, और वह चिराग जैतून के कैसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना शर्की हो ना गर्बी, जिसका तेल आप या भड़का पड़ता हो आग चाहे इसको ना भी लगे। इसी तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हुए। और बात यह है कि यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है, और वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है, और वो हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। इसके नूर की तरफ हिदायत पाने वाले इन घरों में पाए जाते हैं। किन घरों में पाए जाते हैं? जिन्हें बुलंद करने और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्ज़त दिया, और इनमें ऐसे लोग सुबह शाम इसकी तस्बीह करते हैं जिनको तिजारत और ख़रीदो फरोख्त अल्लाह की याद से और इकामत नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं करती। वो इस दिन से डरते हैं जिसमें दिल उलटते और दीदे फिराए जाने की नौबत आ जाएगी, और वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह इनके बेहतरीन अमाल की जजा इनको दे और मज़ीद अपने फ़जल से नवाजे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये देखिए आयत नूर थी, अल्लाह ताला की मिसाल बयान की गई। हकीकत है कि अल्लाह ताला इस कायनात का नूर है, इसमें कोई शक नहीं है। जब अल्लाह ताला की बताई हुई रहनुमाई पर इंसानियत चलेगी तो उधर भी रोशनी होगी। ये है वो चीज़ जिसको आप कहते हैं कुरान का नूर, हर घर में, हर दिल में, हर हाथ में। अगर आज इस सूरत नूर के अहकाम को सिर्फ मैं और आप आम करने वाले बन जाएँ तो आप देखेंगे कि इंसानियत के अंधेरे जो हैं वो दूर हो सकते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को आम नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होता है? अंधेरों में दुनिया पड़ती है। नूर की मिसाल के बाद अल्लाह ताला यहाँ से कुफर की मिसाल देते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसी से आगे शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे घरों को रोशनियों से भर दें और हम सब के दिल, हाथ, चेहरे और दिल के अंदर जो ख्यालात भी आते हैं अल्लाह ताला उनको पाकीज़ा कर दें। अभी तक की जो सूरत पढ़ी है वो सब हमसे इसी बात का तकाजा करती है कि हम जस्ट री राइट आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को दोबारा लिखें और कभी भी मायूस ना हो। देखिए कोई किसी स्टेज पे भी ज़िंदगी के आता है ना अल्लाह से मदद लेने, अल्लाह ताला कभी भी उसको मायूस नहीं करता, और अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से अमल करने वाला बना दे। ये जो आखिरी आयत पढ़ी है इसको सुन लेते हैं, बहुत खूबसूरत आयत है। इसकी तिलावत सुनते वक्त इंशाल्लाह आप लोग भी फिर इंशाल्लाह बात पूरी हो जाएगी।
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.